मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार फ्रेंड्स, पहले मैं कुछ जो खबरें हैं उनके बारे में बातें करूंगा, फिर मुख्य विषय पर मैं आऊंगा। बेहतर होगा कि पहले से मैं उसकी घोषणा न करूं, क्योंकि फिलहाल मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से ऐसी स्थिति आ रही है कि खबरें जो हैं उन्हीं की चर्चा करने में कुछ वक्त इतना ज़्यादा लग जा रहा है कि मुख्य विषय तक हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो पहले आइए कुछ खबरों को देख लेते हैं। परसों एक खबर थी दूरदर्शन न्यूज़ पर, जो फिर बाद में अखबारों में नहीं छपी थी लेकिन दिल्ली के अखबारों में छपी थी, वो खासकर राष्ट्रीय हवाई खेल नीति को लेकर थी। दूरदर्शन पर इसके बारे में अपेक्षाकृत विस्तार से आया था। नेशनल एयरो स्पोर्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय हवाई खेल नीति, बस इसके बारे में थोड़ी सी सामान्य सी बातें अपन जान लेते हैं। जब हम कहते हैं हवाई खेल नीति, तो ये हवाई खेल क्या हुआ? देखिए, हवाई खेल का मतलब है कि जो पृथ्वी से ऊपर उठकर खेल खेले जाते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, या दूरदर्शन पर या जब स्पोर्ट्स चैनल्स वगैरह देखते होंगे आप, तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इस तरह की बातें आपको दिखाई दी होंगी। जैसे कुछ जो नाम है मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एयर बैलूनिंग, हवा बैलून में बैठ करके, गुब्बारे में बैठ करके और फिर ऊपर उड़ते हैं। ड्रोन ग्लाइडिंग, एरो मॉडलिंग, एरोबेटिक्स, पैरा ग्लाइडिंग, पैरा मोटरिंग, स्काई डाइविंग, बेस जंपिंग, विंग सूट, ये सब नाम है ना, थोड़े से नए से नाम हैं, लेकिन अगर आप इनके बारे में थोड़ा भी और जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाइए, आपको पता लग जाएगा और आप पाएंगे कि ये बेसिकली हवा में किए जाने वाले खेल होते हैं, आप पृथ्वी पर टिके होकर के नहीं करते हैं। तो ये है एयरो स्पोर्ट। तो सरकार ने अभी एक नीति जारी की है और इसके तहत जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि 11 प्रकार के हवाई खेलों को इसमें शामिल किया गया है, जिनमें से कुछ के नाम मैंने भी आपको बताए हैं, और इन खेलों के लिए अलग अलग स्थानों पर केंद्र बनाए जाएंगे जहां इन खेलों के लिए सारी सुविधाएं दी जाएंगी। कुछ राज्यों के जैसे नाम हैं, हिमाचल प्रदेश में ऐसे क्लस्टर बनेंगे, राजस्थान भी है उसमें, राजस्थान में खासकर हॉट एयर बैलूनिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस खेल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ के जो क्लाइमेट हो, जो वातावरण हो, वो बिल्कुल उस तरीके का होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ कई कई जगहों पर इस तरह के जो हवाई क्लस्टर हैं वो बनेंगे। एक तथ्य जो आपके दिमाग में अगर रह सके, तो कभी हम अब जब अपनी बात इस तरह से कह देते हैं तो उसका थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है, कि अभी इस तरह के एयरो स्पोर्ट में हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन लगभग 5000 लोग जुड़े हुए हमारे देश में, और इससे सरकार को 80 से 100 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि सरकार टैक्स लगाएगी जहां भी इस तरह के खेल होते हैं। अब ये माना जा रहा है कि अब जबकि ये नई एयरो स्पोर्ट्स पॉलिसी आ गई है और इसमें इसका विकास किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा, तो इससे सरकार को लगभग हर साल 10,000 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू मिल सकता है। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि 1,00,000 लोगों से भी अधिक, आप कुछ कह लीजिए कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? देखिए, भारत में तो शायद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इसीलिए आप देखिए कि इतनी बड़ी हमारी आबादी है और सिर्फ 5000 लोग इसमें अभी जुड़े हुए हैं, लेकिन फॉरेनर्स जो हैं इसमें बहुत रुचि लेते हैं, ये मैंने खुद देखा है। थोड़ा सा रोमांचक होता है ना, थोड़ा सा खतरा भी होता है, जोखिम वाले गेम होते हैं, तो वो खूब आनंद लेते हैं फॉरेनर्स। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमारे टूरिज्म को भी बढ़ावा इससे मिलेगा। दोस्तों, एक दो खबरें हैं जो आप लोगों ने बहुत ही विस्तार के साथ न्यूज़ में भी सुना है और अखबारों में भी आज आपको पढ़ने को मिलेगा, और वो है, एक तो आरबीआई ने रेपो दर में वृद्धि कर दी है, 1 महीने के अंदर ही दूसरी बार वृद्धि की गई है। कुछ दिनों पहले जब इसमें वृद्धि की गई थी तो मैंने बहुत विस्तार के साथ इस टॉपिक पर बात की थी, इसीलिए अब उन्हें दोहराने की यहाँ मैं ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ। अखबारों में काफ़ी कुछ लिखा गया, अब दूरदर्शन पर न्यूज़ में कल अच्छे तरीके से समझाया गया था कि रेपो दर बढ़ाया गया है तो इसका क्या मतलब हुआ। बहुत सिंपल सा तरीका है, रेपो दर बढ़ा दिया गया है तो अब जब आप बैंक से कोई भी कर्ज लेने जाएंगे तो जो ऋण की दर होगी, जो ब्याज की दर कहना चाहिए, वो ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कि पहले 100 रुपए में आपको 10 रुपए ब्याज देना पड़ता था एक साल में, तो अब पता लगेगा कि उसकी जगह 11 रुपए आपको देना पड़ेगा 100 रुपए के अगेंस्ट। तो इस तरह से अगर हम बहुत ही बोलचाल की भाषा में कहें तो ईएमआई जो है वो महंगी हो जाएगी, लोन महंगे हो जाएंगे। जब लोन महंगे हो जाएंगे तो फिर आप स्वाभाविक है कि आप बैंक से कम लोन लेंगे, और जब बैंक से कम लोन लेंगे तो बाजार में मुद्रा कम आएगी। आरबीआई ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि खासकर चूंकि महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उसने इस तरह के कदम उठाए हैं। तो फ्रेंड्स, डिटेल्स में अखबारों में आज काफ़ी कुछ लिखा गया है, चूंकि मैं इस पर बात कर चुका हूं इसलिए दोबारा मैं दोहरा नहीं रहा हूं, इसके लिए माफ़ी चाहूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और इस पर आपकी अच्छी समझ होनी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सरल रूप में पूरी की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को समझाने की कोशिश की गई है। किताबों में ये चैप्टर होता ही होता है, और आपको चाहिए कि आप इसे समझें, पढ़ें नहीं, केवल याद न करें, समझें। क्योंकि इस समझ पर आधारित प्रश्न इकोनॉमिक्स से जो जुड़े हुए होते हैं प्री एग्जामिनेशन में तो कम से कम पूछे ही जाते हैं, ऑलमोस्ट एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है। इसीलिए इस टॉपिक पर आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। दूसरी जो खबर है दोस्तों वो एमएसपी को लेकर के है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बीच बीच में हम लोग इस पर भी बातें करते रहे हैं। सरकार ने खासकर अभी जो खरीफ की फसल होनी है, जिसे हम बरसात की फसल आप कह सकते हैं, उसमें जो भी फसलें आती हैं उनके लिए बकायदे एमएसपी घोषित कर दी है। ये भी आपके सिलेबस का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और खासकर मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। इसका मतलब ये नहीं कि प्री में इसका कोई रोल नहीं है, और ये चैप्टर आपको मालूम होना चाहिए। देखिए अभी खूब सारे डेटा आए हैं, है ना, इतने सारी खाद्यान्न और तिलहन और दलहन होती हैं, उन सब में कितने कितने रेट्स बढ़ाए गए हैं, बढ़ा करके कितना किया गया है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूरदर्शन न्यूज़ अगर आपने देखा हो तो उन्होंने सारी वस्तुओं के बारे में बहुत डिटेल में दी हुई थी, बातें कही गई थी। अखबारों में भी आज बहुत विस्तार से कुछ अखबारों में दिया हुआ है, तो आप इन डेटा के चक्कर में मत पड़िएगा कि किसका कितना था तो कितना बढ़ा करके कितना किया गया। नॉट एट ऑल, बढ़ाया गया है और लगभग लगभग ठीक ठाक बढ़ा दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि जब भी कोई फसल बोने की शुरुआत होने वाली होती तो सरकार ठीक उससे पहले ही, चाहे वो खरीफ की फसल हो या रबी की फसल हो, उसकी एमएसपी निर्धारित कर देती है, ताकि किसानों को पता लग जाए कि जब वो इस तरह का खाद्यान्न, तिलहन, दलहन जो भी है उत्पादित करेंगे तो बाजार में वो किस रेट में बिक सकेगा, तो वो बकायदे कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी योजना बना सकते हैं। एमएसपी क्या है आप सब जानते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। सरकार दावा करती है कि इतना इसका रेट होना चाहिए, और अगर बाजार में इतना रेट नहीं मिलेगा तो हम खरीदेंगे। अब देखिए गेहूं और धान तक की जहां बात है, इसका तो उत्पादन इतना ज़्यादा होता है कि सरकार उस सारा उत्पादन नहीं खरीद पाती। अगर एमएसपी से कम रेट किसानों को मिल रहा है बाजार में तब भी उसके लिए संभव नहीं हो पाता है, लेकिन दूसरी चीज़ों में सरकार काफ़ी कुछ मैनेज कर लेती है क्योंकि हमारा उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये चैप्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और प्लीज़ जो एमएसपी है कैसे निर्धारित होता है, उसका क्या फार्मूला है, किस तरीके से उसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, अभी इसकी क्या सीमाएं हैं। आपको मालूम होगा कि जो किसान आंदोलन हुआ था कुछ समय पहले, वो उनका यही कहना था कि सभी के लिए एमएसपी निर्धारित किया जाए और सरकार गारंटी दे कि एमएसपी पर वो पूरा खरीदेगी। तो इस तरह की डिमांड जो होती हैं, किसानों से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उनको इसके माध्यम से आप समझ सकेंगे और अपने तरीके से एनालाइज भी कर सकेंगे। तो प्लीज़ आप उसे भी ध्यान से इस चैप्टर को तैयार कर लें। दोस्तों आज अखबारों में तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं है, लेकिन दूरदर्शन पर इसकी खबर थी। कभी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है जिसमें भारत को सबसे नीचे पायदान पर रखा गया है, और भारत सरकार ने इसे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है कि हम इसे नहीं मानते। और सच बात यह है कि सुनने के बाद मुझे भी लगा कि ये क्या है, मतलब जानबूझ करके क्या भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है या क्या किया जा रहा है। भारत पर्यावरण की दृष्टि से सबसे नीचे पायदान पर हो सूचकांक में, सवाल ही नहीं है। किस रूप में है तो उसमें बकायदे दूरदर्शन न्यूज़ पर बकायदे पॉइंट्स दिए हुए थे कि भारत ने उसको लेकर के कौन कौन से सवाल खड़े किए हैं। मूल बात यही है कि सूचकांक के जो आधार बनाए गए हैं, जो मानक तैयार किए गए हैं, जिन स्टैंडर्ड्स पर सूचकांक जारी किया गया है, भारत का कहना है कि वह सूचकांक ही अपने आप में सही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप 2050 कार्बन उत्सर्जन को ले रहे हैं, तो उसको तो आपने ले लिया, लेकिन आप ये नहीं ले रहे कि गैर जीवाश्म तरीके से कितने प्रतिशत इस बीच के देशों में किस किस देशों ने कितना उत्पादन करना शुरू कर दिया है। भारत गैर जीवाश्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारा फॉरेस्ट का कवरेज इतना ज्यादा बढ़ गया है, आपने फॉरेस्ट के कवरेज को उसमें नहीं लिया है। तो इस तरह से भारत ने कई उसके उस पर सवाल खड़े किए हैं कि जो इनफैक्ट इंक्लूड होने चाहिए थे आप उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं होने चाहिए थे आप उनको इंक्लूड कर रहे हैं। इसको लेकर के जनसत्ता ने आज एडिटोरियल कमेंट भी लिखा है, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और वो उसका शीर्षक है कुदरत से खिलवाड़। आप उसे पढ़िएगा, और साथ ही साथ अगर आपको और कुछ डिटेल्स में पॉइंट्स चाहिए तो आप चाहें तो कल जो दूरदर्शन की न्यूज़ है आप उसे जाकर के सुन सकते हैं, और उसमें से आपको 3-4 अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसके आधार पर इसे रिजेक्ट किया जा रहा है। यहाँ मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, इसे आप नोट मत कीजिएगा कि भारत के पर्यावरण की स्थिति इतनी खराब है कि सूचकांक में बिल्कुल नीचे है और दुनिया में उसकी सबसे बेकार हालत है। इस तरह का आप निष्कर्ष मत निकालिएगा। अगर मेंस में आप अपीयर हो रहे हों तो, अगर मेंस में अपीयर नहीं हो रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये निष्कर्ष मत निकालिएगा, इसके लिए मैं आपको सतर्क करना चाहूंगा। हाँ, भारत किस आधार पर उन्हें रिजेक्ट कर रहा है उसके बारे में आप चाहें तो आप थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे खबरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। चूंकि वक्त नहीं है तो आप इसे ही मुख्य विषय का हिस्सा समझ लें। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड की जा रही हैं। आप सब जानते हैं कि हम लोगों की जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 7 से 21 अक्टूबर के बीच में होने वाली हैं। इसके लिए रायपुर छत्तीसगढ़ के हमारे दोस्त हैं आशीष सोनी, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आशीष एकेडमी की पूरी टीम की ओर से मैं आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं रिंकल जाडा, चंद्रानंद सिंह, प्रत्यूष रंजन कुमार पटना और अबू होरेरा बंसबारी अररिया बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।